मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 17 जुलाई 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 7 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं मोहम्मद शाहवेज, आप न्यू सैलमपुर दिल्ली से हैं। सूरज सिंह, आपका गांव है तुलापुर, जिला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। संजीव कुमार, खोदागंज बिहार से। अपार शर्मा, बदायूं उत्तर प्रदेश से। साक्षिता सिंह, आपका गांव है खगा, जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश से। गांधी कुमार, मोतिहारी बिहार से। और आकाश कुशवाहा, आपका गांव है लेहरी, जिला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। तो मोहम्मद शाहवेज, सूरज, संजीव, अपार, साक्षिता, गांधी कुमार और आकाश, आप सभी 7 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आपसे अधिग्रहण पर बात कुछ करूंगा। ये बेसिकली आप ये कह लीजिए कि इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी का टॉपिक है अधिग्रहण। न्यूज में आपने इस शब्द को सुना होगा, आइए उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। आइए पहले कुछ दूसरी खबरें देख लेते हैं। फ्रेंड्स, एक खबर जो बहुत ही सामान्य सी ऊपरी तौर पर दिखाई देती है, बहुत ही सामान्य सी, लेकिन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सामान्य नहीं है। इस पर प्रश्न भी ऑलरेडी पूछे गए हैं। आपने देखा कल, अगर आप डीडी न्यूज देखे होंगे तो उसमें न्यू इंडिया कॉन्क्लेव का उद्घाटन हुआ है और उसमें प्रधानमंत्री जी का भाषण था। प्रधानमंत्री जी गए और उन्होंने अपना भाषण दिया और प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन था वो बेसिकली ठीक है, हमारा देश कैसे पिछले 4 सालों में आगे बढ़ा है वो सारी बातें थी, लेकिन जो फोकस था वो यंग इंडिया पर था, यंग इंडिया, युवा भारत। तो वो न्यू इंडिया को बेसिकली यंग इंडिया के रूप में डिफाइन कर रहे थे, राइट? अब आप देखिए कि ये जो यंग इंडिया है ये आपके सिविल सर्विस के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। युवा भारत जब हम कहते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका सीधा साथ जो मतलब है फ्रेंड्स वो ये है कि हमारे देश की आबादी में अभी, ये भारत का बहुत बड़ा कह लीजिए कि सौभाग्य या कह लीजिए कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि हमारी आबादी का, न्यूज में भी आपने सुना कि जो 50% भाग है उसकी उम्र 25 वर्ष से कम है, ये न्यूज में थी, है ना? थोड़ा थोड़ा उसमें डिफरेंस आ जाता है, आप अखबारों में पढ़ेंगे। तो ये माना जाता है सामान्य तौर पर कि जो हमारा भारत है अभी, भारत की आबादी का 55-60% हिस्सा यंग है। चलिए हम इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यंग है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि भारत के पास अभी सबसे अधिक कार्य क्षमता है, सबसे अधिक शक्ति है, सबसे अधिक ऊर्जा है। तो अब इस ऊर्जा का आप क्या करेंगे, इस कार्य शक्ति का क्या करेंगे? तो सीधी सी बात है कि यदि आप इनके हाथों को काम उपलब्ध नहीं कराएंगे तो ये हाथ पता नहीं फिर क्या करेंगे। इसीलिए जो समाजशास्त्री हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो जब समाज का विश्लेषण करते हैं तो वो कहते हैं, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। अगर युवा किसी रचनात्मक काम में लग गए तो देश को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देंगे, और यदि ध्वंसात्मक काम में लग गए तो स्थिति बदतर से बदतर होती चली जाएगी। तो ये युवा जो शक्ति है, हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम कैसे इसका सकारात्मक उपयोग करें। तो जो न्यूज में ही ये बात थी कि जो राष्ट्रीय कौशल जो विकास योजना भारत ने शुरू की है, बेसिकली उसमें लक्ष्य रखा गया है कि हम अपने 40 करोड़ युवाओं को इसके तहत प्रशिक्षित करेंगे। आप जानते हैं कि भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है स्किल्ड, हमें लेबर नहीं मिलते, स्किल्ड वर्कर्स नहीं मिलते, तो इनको प्रशिक्षित किया जाए ताकि ये जो हाथ हैं ये रचनात्मक काम कर सकें। दुनिया के किसी भी दूसरे देश के सामने अभी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, मतलब जापान वगैरह की हालत तो ये हो गई है कि वहां वृद्धों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उससे जापान की अर्थव्यवस्था और समाज में एक संकट सा पैदा हो गया है। तो इसे ही हम कहते हैं दोस्तों डेमोग्राफिक डिविडेंड। इस पर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, आप अगर अनसॉल्व पेपर उठा करके देखेंगे और खासकर मेन्स में, जनांकिकी लाभांश जिसे आप हिंदी में कहेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी का तो ये हॉट टॉपिक है ही है, और चूंकि प्रधानमंत्री जी का पूरा एक बहुत विस्तार के साथ इस पर उद्बोधन उन्होंने दिया है, तो इससे आप समझ लीजिए कि यह एक आपके लिए इस साल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन गया है। दूसरी जो सामान्य सी खबर है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि भारत 7.5 जो जीडीपी की ग्रोथ है उसको मेंटेन करके रखेगा और 2019 में भी ये लगातार इसको मतलब कायम रख सकेगा 7.5, और सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ करने वाला राष्ट्र भारत बना रहेगा। अभी भी आप देखते हैं 6 point something है, तो अगले बार मतलब जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए उन्होंने 7.5 की बात कही है, प्रेडिक्ट किया है, तो एक सामान्य सा डेटा है, बस आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। एक जो खबर है मित्रों, मैं समझता हूं कि यह भी थोड़ी सी महत्वपूर्ण खबर है, आज के अखबारों में काफी वो छपा भी है, न्यूज में भी था कि अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति के बीच में फिनलैंड की जो राजधानी है हेलसिंकी वहां बातचीत हुई है। देखिए वैसे तो ये घटना सामान्य सी है, लेकिन अगर रूस और अमेरिका आपस में बातचीत कर रहे हैं तो यह सामान्य घटना नहीं है। ये दो ठीक है कि 1991 के बाद रूस का विभाजन हो गया है या रूस अब उतनी बड़ी शक्ति नहीं रह गई है, लेकिन पुतिन के आने के बाद रूस फिर से एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरने लगा है, और इन दोनों देशों के बीच बातचीत होने का मतलब आप सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि दुनिया के दो बड़े राष्ट्रों के बीच बातचीत का होना है। अखबारों में ही आपने पढ़ा होगा जब ट्रंप ने कहा कि हमारी ये बातचीत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो परमाणु अस्त्र हैं दुनिया के 90% तो केवल इन दोनों देशों के पास हैं। इसका मतलब है कि अगर विश्व में शांति चाहिए तो दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, लेकिन बीच बीच में आप देखते हैं कि कैसे तनाव की स्थिति बन जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जिसे आप कोल्ड वार कहते हैं, द्वितीय महायुद्ध के बाद जिसे आप शीत युद्ध, हिंदी में शीत युद्ध कहा जाता है, वो शीत युद्ध बेसिकली किन के बीच था? रूस और अमेरिका के बीच में। अमेरिका पूंजीवादी देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, रूस जो है वो साम्यवादी देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत के मामले में दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे, और इन्हीं के बीच में लगातार एक ऐसा युद्ध चलता रहता था जो जिसे हम कोल्ड वार कहते थे, यानी कि रण क्षेत्र में तो आकर के इन्होंने बम वम नहीं गिराए, लेकिन एक तनाव की स्थिति लगातार बनी रहती थी। लेकिन बाद में फिर क्रुश्चेव, जब स्टालिन के बाद क्रुश्चेव जब रशिया के राष्ट्रपति बने, तब फिर धीरे 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 उस शीत युद्ध में थोड़ा सा ढीलापन आया, अमेरिका और रूस के बीच बातचीत होने लगी, और बाद में जब रूस बिखर गया तो फिर तो वह चीज खत्म ही हो गई। तो इस प्रकार मित्रों आप कह सकते हैं कि दोनों देशों की जो आपसी बातचीत है ये दुनिया को बहुत राहत देने वाली बातचीत है। अखबार में थोड़ा सा फिनलैंड के बारे में लिखा हुआ था कि ये जगह उन्होंने क्यों चुनी। कभी कभी प्री में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, उसका सिंपल सा रीजन है कि देखिये जो इन दोनों गुट ने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अपने अपने समूह बनाए, एक नाटो संगठन के नाम से जाना जाता है, ये बेसिकली सैन्य संगठन है नाटो, जिसका नेता अमेरिका है, यानी जिसमें यूरोप वगैरह के बहुत से देश शामिल हैं। दूसरा वारसा संधि कहलाती है, जिसका जो लीडर है वो उस समय यूएसएसआर था। तो ये दोनों के दोनों सैन्य संगठन थे। फिनलैंड की ये विशेषता थी कि वो नाटो का सदस्य नहीं है, यानी कि वो किसी भी गुट में शामिल नहीं है, न तो अमेरिका के गुट में शामिल है न यूएसएसआर के गुट में शामिल है, इसलिए उन्होंने फिनलैंड को चुना। ये एक प्रतीकात्मक है, यानी कि जो किसी भी गुट के तरफ नहीं है। तो मित्रों ये थोड़ी सी जानकारी रूस और अमेरिका के बीच हुई बातचीत के बारे में है। अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं। मुख्य विषय के तहत जो न्यूज है वो है कि जो जीवन बीमा निगम है, जीवन बीमा निगम ने आईडीबीआई जो बैंक है उसका 51% शेयर लेकर के, आप कह लीजिए आप 51% की हिस्सेदारी करके उसका अधिग्रहण कर लिया है। देखिए यहां थोड़ा सा अधिग्रहण को समझ लीजिए। एक तो होता है कि आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लीजिए, ठीक है, तो आप जितने शेयर खरीदेंगे उतना के आप हिस्सेदार हो जाएंगे, लेकिन जो मैनेजमेंट होता है कंपनी का, यानी कि कंपनी पर अधिकार किसका, मालिकाना हक कह लीजिए अगर बहुत सरल भाषा में समझाने के लिए मैं कहना चाहूं, तो इस कंपनी का मालिक कौन है? शेयर होल्डर तो बहुत हैं, हजारों लाखों लोगों ने उसके शेयर लिए हुए हैं, तो जो मालिकाना हक है यानी कि उस कंपनी का जो मैनेजमेंट होगा उसके टॉप पर जो व्यक्ति बैठा होगा वह होगा, एक व्यक्ति होगा या एक संस्था होगी जिसके पास टोटल जो उसकी कैपिटल है उसका 51% होगा। 51%, यानी कि यहां डेमोक्रेटिक लॉ आपको दिखाई दे रहा सीधे सीधे आधे से अधिक, 51%। फिर चाहे दूसरे के पास 49% टोटल क्यों ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जो मालिकाना हक है वो 51% को मिलेगा। तो आपने न्यूज में सुना कि जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, उसने IDBI के 51% हिस्सेदारी ली है। इसका मतलब है कि उसका मालिकाना हक चेंज हो गया है। अभी तक IDBI जो बैंक थी वो PS पब्लिक सेक्टर यूनिट थी। आपने सुना कि इस बीच में कई बैंकों को नुकसान हुआ, उसमें IDBI भी थी। तो जब बैंकों को नुकसान होता है तो देखिए तो पब्लिक फंड ही उसमें बर्बाद होता है ना। फिर सरकार क्या करती है, सरकार उन्हें अपनी तरफ से पैसा देती है, फिर उनको जिंदा करती है और फिर वो काम करने लगते हैं और पता लगा कि कुछ सालों के बाद वो फिर से नुकसान में आ जाते हैं। तो इसके बहुत से रीजन है कि हमारे बैंक जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है वो सही तरीके से परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं। यह भी आपके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको जानना चाहिए। देखिए सबसे बड़ा दारोमदार तो प्रबंधन पर होता है, क्योंकि प्रबंधन ही निर्णय लेता है, सारे फैसले वो करता है, सारी व्यवस्थाएं वो देखता है। तो अगर प्रबंधन प्रोफेशनल होगा तो स्वाभाविक है कि वो बैंक प्रॉफिट में भी रहेंगे, एटलीस्ट लॉस में तो नहीं रहेंगे। आफ्टर ऑल प्राइवेट बैंक देखिए, प्राइवेट बैंक इतने साल से चल रहे हैं और सब कमाई कर रहे हैं, वहीं हमारे जो PSU के बैंक है वो नुकसान में है। तो ऐसी स्थिति में या तो सरकार उस बैंक को पूरी तरह से प्राइवेट के हाथ में दे दे, तो उस पर फिर जो यूनियन है उस तरह की आलोचनाएं होने लगती हैं कि उस बैंक को सरकार ने बेच दिया। तो दूसरा क्या करे, तो देखिए जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है LIC है, बेसिकली वह भी पब्लिक सेक्टर यूनिट की ही तरह है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, लेकिन उसमें प्रोफेशनल लोग हैं, LIC में प्रोफेशनल लोग हैं। तो अब अगर LIC ने इसके मैनेजमेंट को अपने हाथ में ले लिया तो अब उस पर सरकार का उस तरीके का दबदबा खत्म हो जाएगा जो अभी है, यानी कि जो सरकार का जो इंटरफेरेंस होता है, सरकार जो उसके बारे में निर्णय लेती है वह काफी कुछ कम हो जाएगा। और अब इस बैंक का जो कारोबार है वो एक तरीके से व्यावसायिक दक्षता के साथ होने लगेगा, क्योंकि LIC अपने आप में बहुत अच्छी एक प्रोफेशनल बॉडी मानी जाती है। आप देखिए कि LIC को कितना फायदा होता है। तो LIC ने अब IDBI को ले लिया, तो आप यूं कह लीजिए कि यह एक रास्ता निकाला गया है कि हमारे जो बैंक नुकसान में आ गए हैं उनको पुनर्जीवन कैसे दिया जाए। तो उस पुनर्जीवन का एक रास्ता निकाला कि ठीक है, एक सरकार के तंत्र से निकल करके उसे दूसरे में रख करके देखा जाए। अब देखना यह है कि यह जो सरकार का निर्णय है यह कितना सही है, कितना व्यावहारिक है, और LIC कैसे इसको एक प्रोफेशनल शेप देकर इस नुकसान के दलदल से बाहर निकाल सकती है। तो मित्रों यही कहने का अर्थ था कि अधिग्रहण कर लिया, अदरवाइज LIC चाहती तो उसमें उसका 10% शेयर खरीद लेती, 20% शेयर खरीद लेती, तो उसमें उसको मालिकाना हक नहीं मिलता, अब उसके मैनेजमेंट पर उसका दबदबा हो जाएगा। कुल मिलाकर के यह इसका अर्थ होता है मित्रों अधिग्रहण करना। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर, तो कई क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैं आपको क्लिपिंग्स प्रोवाइड करता हूं जरूरी नहीं है कि आप सारे क्लिपिंग्स पढ़ें, आपको अपने ढंग से देखना होगा। मैं जो प्रोवाइड करता हूं उसका अर्थ केवल इतना होता है कि ये सब आपके पढ़ने लायक हैं, टॉपिक है, ये टॉपिक आपको जानना चाहिए। हर स्तर के मैं क्लिपिंग्स देता हूं कि जो लड़के शुरुआत कर रहे हैं, जो स्टूडेंट, उनके भी समझ के हों। फिर मैं थोड़े से अच्छे गंभीर किस्म के भी आर्टिकल्स देता हूं कि जो स्टूडेंट लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनके लायक भी हो। तो आप देखिए कि आपके लायक कौन सा है और उस तरीके से आप निर्णय लीजिए, क्योंकि मेरे पास लगातार मेल आते रहते हैं कि क्या सर सभी क्लिपिंग्स हमारे हमको पढ़ना जरूरी है, क्या करें हम उनका। तो आप यह निर्णय मित्रों आप सबको खुद ही लेना होगा। तो मित्रों अब मैं आता हूं ईमेल पर, सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, वैभव जैन, देवी सिंह घोषी जैसी नगर मध्य प्रदेश से, अमित कुमार, विनय कुमार तिरवा कन्नौज उत्तर प्रदेश से, प्रदीप कुमार कैथल हरियाणा से, रेखा द्रविड फिरोजपुर पंजाब से, शुभम अग्रहरी, वेद प्रकाश और अभिषेक सिंह सुदासपुर उत्तर प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।